हम लोग अक्सर ऐसी चीजों को हमेशा के लिए सच मान लेते हैं जो हमारी आंखों के सामने होती हैं।
हाँ, ऐसा होता है, जो दिख रहा है वही सच लगता है।
बिल्कुल, मतलब जरा एक बहुत ही अजीब लेकिन सच्ची घटना की कल्पना करते हैं, सहारा रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं।
सहारा का नाम सुनते ही सबसे पहले रेत याद आती है ना?
एकदम, अगर हम सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच खड़े हों तो चारों तरफ सिर्फ चिलचिलाती धूप और रेत के विशाल टीले ही नजर आएंगे। बहुत भयंकर सूखा।
हाँ, वहाँ तो दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं होता।
लेकिन पता है, अगर हम समय में कुछ हजार साल पीछे जाएं, तो ये वही सहारा है जहाँ विशाल झीलें थी, मतलब वहाँ हरियाली थी।
अरे वाह, सच में? मतलब वहाँ जंगल थे?
हाँ बिल्कुल, और सिर्फ जंगल नहीं, हिप्पोपोटामस जैसे जानवर वहाँ पानी में तैरते थे। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है।
अच्छा, तो ये हमारी ही पृथ्वी का इतिहास है।
अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने एक हरे भरे जंगल को दुनिया के सबसे बड़े और सूखे रेगिस्तान में बदल दिया?
ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो मतलब हमें ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि हमारी पृथ्वी कोई स्थिर या ठहरी हुई चीज नहीं है।
सही कहा, वो कौन सा स्विच था जो अचानक दब गया?
वो स्विच असल में पृथ्वी के बहुत ही जटिल प्रणाली का हिस्सा था। हुआ ये था कि पृथ्वी की धुरी में एक हल्का सा झुकाव आया।
अच्छा, सिर्फ एक हल्का सा झुकाव?
हाँ, और उस झुकाव ने हवा के पैटर्न को बदल दिया। हवा के बदलने से बारिश रुक गई और बारिश रुकने से जमीन सूख गई।
और जमीन सूखने से वहां का पूरा जीवन ही खत्म हो गया।
एकदम सही, मतलब ये पूरा का पूरा एक चेन रिएक्शन था।
ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। आज की इस गहन चर्चा में हम जो स्रोत लेकर आए हैं वो असल में हमारी इसी पृथ्वी का एक तरह का ऑपरेटिंग मैनुअल है।
हाँ, और ये मैनुअल बहुत जरूरी है।
बिल्कुल, आज हम बात कर रहे हैं भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी की। और हमारा मिशन आज सिर्फ ये रटना नहीं है कि नक्शे पर माउंट एवरेस्ट कहाँ है।
हाँ, या फिर अमेज़न नदी कहाँ बहती है, ये भी नहीं।
सही कहा, हमारा मिशन ये डीकोड करना है कि हमारे आसपास की प्रकृति, ये मौसम, ये मिट्टी, ये विशाल महासागर वास्तव में एक विशाल मशीन की तरह काम कैसे करते हैं।
और आज के दौर में जहां हम रोज जलवायु परिवर्तन या बेमौसम बारिश के बारे में सुनते हैं, इसे समझना बहुत जरूरी हो गया है।
बिल्कुल, अचानक आने वाली बाढ़ भी तो इसी का हिस्सा है ना?
हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पूरी प्रणाली आपस में कैसे जुड़ी है। अगर हम इस मैनुअल को नहीं समझेंगे तो हम सिर्फ लक्षणों को ही देखते रह जाएंगे।
मतलब हम बीमारी की जड़ तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, मैं सही सोच रही हूँ ना?
एकदम सही। भौतिक भूगोल हमें वो नजरिया देता है जिससे हम पृथ्वी के काम करने के तरीके को समझ सकें।
तो चलिए इस मशीन के पुर्जों को समझते हैं। हम सभी ने स्कूल में पढ़ा है कि पृथ्वी के चार मुख्य मंडल होते हैं।
द फोर स्फीयर्स।
बिल्कुल, स्थल मंडल यानी लिथोस्फेयर जो हमारी ठोस जमीन है, वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर जो हवा है, जल मंडल यानी हाइड्रोस्फेयर मतलब पानी, और जैव मंडल यानी बायोस्फेयर जहाँ जीवन है।
हाँ, ये बुनियादी बातें तो हम जानते हैं,
लेकिन स्रोत का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये नहीं है कि ये चारों मंडल मौजूद हैं। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये आपस में टकराते कैसे हैं।
बिल्कुल, इनका इंटरेक्शन ही सबसे जरूरी चीज है।
तो अगर हम पृथ्वी को एक विशाल घड़ी या मशीन मान लें, तो ये चारों मंडल उसके चार बड़े गियर्स की तरह हैं।
यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि ये गियर्स कभी भी अकेले नहीं घूमते।
मतलब एक दूसरे पर असर डालते हैं।
हाँ, अगर एक गियर एक मिलीमीटर भी खिसकता है तो उसका असर बाकी तीनों गियर्स पर पड़ता है।
अच्छा,
भौतिक भूगोल केवल इन मंडलों के अलग अलग अध्ययन का नाम नहीं है बल्कि ये इनके बीच के अंतर संबंधों का विज्ञान है।
मुझे यहाँ थोड़ा रुकना होगा क्योंकि ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि सब कुछ आपस में जुड़ा है, लेकिन जमीनी स्तर पर ये काम कैसे करता है?
यह एक बहुत अच्छा सवाल है।
मतलब मान लीजिए हवा का गियर यानी हमारा वायुमंडल तेजी से घूमने लगे, हवा के दबाव में बदलाव आ जाए, तो स्रोत के अनुसार ये कैसे तय होता है कि इसका जमीन पर क्या असर पड़ेगा?
क्या ये सिर्फ एक सैद्धांतिक बात है, आप ये पूछना चाह रही हैं?
हाँ बिल्कुल, क्या ये सिर्फ थ्योरी है?
सैद्धांतिक बिल्कुल नहीं है, इसे एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं। प्रशांत महासागर में चलने वाली हवाओं को लेते हैं।
ठीक है, पैसिफिक ओशन की हवाएं।
हाँ, अगर वायुमंडल का गियर थोड़ा सा बदलता है और हवाओं की दिशा या गति में बदलाव आता है तो वो सीधे तौर पर समुद्र की सतह के पानी को धकेलना शुरू करता है।
अच्छा, तो हवा ने पानी को धकेला।
बिल्कुल, और ये हमारा जलमंडल का गियर है। हवा के बदलने से समुद्र की धाराएं बदल जाती हैं, गर्म पानी किसी नए तट की ओर बहने लगता है।
तो जब वो गर्म पानी किसी नए तटीय इलाके से टकराता है तो क्या होता है?
वहाँ की हवा में नमी बढ़ जाती है और नमी बढ़ने से भारी बारिश होती है।
ओह, और वो बारिश जब जमीन पर यानी स्थल मंडल पर गिरती है तो वो असर दिखाती होगी।
एकदम सही, वो बारिश चट्टानों को तोड़ती है, भूस्खलन लाती है।
बाप रे।
और अंत में उस जमीन पर रहने वाले जीवों को यानी हमारे जैव मंडल को अपना घर छोड़कर भागना पड़ता है या फिर नई परिस्थितियों में ढलना पड़ता है।
मतलब एल नीनो जैसी घटनाएं ठीक इसी तरह काम करती हैं ना?
बिल्कुल, एल नीनो इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है।
तो इसका मतलब ये सिर्फ क्या और कहाँ की बात नहीं रह गई है, यहाँ पूरा फोकस क्यों और कैसे पर है।
हाँ, गियर सिर्फ अपनी जगह पर मौजूद नहीं है, वे लगातार कुछ नया निर्माण कर रहे हैं
और कुछ पुराना नष्ट भी कर रहे हैं। स्रोत भी इसी बात पर जोर देता है कि भौतिक भूगोल का कार्य क्षेत्र ये समझना है कि कोई चीज वहां क्यों है और कैसे बनी।
इसी वजह से हम कह सकते हैं कि एक भौतिक भूगोलवेत्ता यानी फिजिकल ज्योग्राफर एक तरह से डिटेक्टिव या जासूस की तरह काम करता है।
जासूस, ये डिटेक्टिव वाली बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी।
हाँ, क्योंकि जब वे किसी विशाल पर्वत श्रृंखला या किसी गहरी खाई को देखते हैं तो वे केवल उसकी सुंदरता की तारीफ नहीं करते।
अच्छा, तो वे क्या करते हैं?
वे सुराग ढूंढते हैं, वे पूछते हैं कि ये पहाड़ यहाँ क्यों है, ये खाई कैसे बनी, इसके पीछे का कारण क्या है।
मतलब अगर हम हिमालय को देखें तो एक आम नजरिया ये होता है कि वाह क्या पहाड़ है, बर्फ से ढका हुआ है।
बिल्कुल, हम सब यही सोचते हैं।
लेकिन इस मैनुअल के अनुसार हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर करोड़ों साल पहले ऐसा क्या हुआ कि एक समतल जमीन अचानक से आसमान को छूने लगी।
हिमालय का उदाहरण तो सबसे सटीक है इस बात को समझने के लिए।
तो इसके पीछे का कैसे और क्यों क्या है?
अगर हम इसे समझें तो हमें स्थल मंडल के अंदर झांकना होगा। पृथ्वी की जो ऊपरी परत है जिसे हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं वो स्थिर नहीं है।
हाँ, प्लेट्स तो हमेशा खिसकती रहती है।
बिल्कुल, करोड़ों साल पहले भारतीय प्लेट एक नाव की तरह खिसकते हुए यूरेशियन प्लेट से जा टकराई।
और ये कोई छोटी मोटी टक्कर तो नहीं रही होगी?
बिल्कुल नहीं, ये इतनी भयंकर टक्कर थी कि दोनों प्लेट्स के बीच की जमीन मुड़कर ऊपर उठने लगी।
अरे वाह।
और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? आज अगर हम माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जाएं तो वहां समुद्री जीवों के जीवाश्म मिलते हैं, फॉसिल्स।
एक मिनट, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर समुद्री जीवाश्म?
ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है।
हाँ बिल्कुल, सच है ये।
इसका मतलब है कि जो जमीन आज दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है वो कभी किसी प्राचीन समुद्र के तल में हुआ करती थी।
यही तो वो जासूसी है जो भौतिक भूगोल हमें सिखाता है। आंतरिक शक्तियों ने समुद्र के तल को उठाकर आसमान तक पहुँचा दिया। ये तो बहुत ही अद्भुत है।
और ये प्रक्रिया रुकी नहीं है, ये आज भी चल रही है। हिमालय आज भी हर साल कुछ मिलीमीटर बढ़ रहा है।
लेकिन अगर हिमालय हर साल बढ़ रहा है तो मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है।
हाँ, पूछिए।
करोड़ों सालों से अगर ये पहाड़ बढ़ ही रहे हैं तो अब तक इन्हें वायुमंडल पार करके अंतरिक्ष में नहीं पहुंच जाना चाहिए था?
बहुत ही तार्किक सवाल है।
मतलब कोई तो ऐसी चीज होगी जो इनकी ऊंचाई को रोक रही है ना?
बिल्कुल है, और यहीं पर हमारे स्रोत की अगली महत्वपूर्ण शाखाओं की एंट्री होती है।
अच्छा, वो कौन सी शाखाएं हैं?
भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी और जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी। जो सवाल आपने अभी पूछा उसका जवाब इन दोनों के बीच के घमासान युद्ध में छिपा है।
इसे थोड़ा सरल करते हैं। स्रोत के अनुसार भू आकृति विज्ञान स्थल रूपों का अध्ययन है, मतलब जमीन के अलग अलग आकार।
हाँ, लैंडफॉर्म्स।
और इसमें दो तरह की शक्तियों का जिक्र है, आंतरिक शक्तियां और बाहरी शक्तियां। तो क्या हम मान लें कि टेक्टोनिक प्लेट्स का टकराना वो आंतरिक शक्ति है जो पहाड़ को ऊपर धकेल रही है?
एकदम सही, यांत्रिक शक्तियां एक मूर्तिकार की तरह काम करती हैं।
मूर्तिकार?
जैसे मिट्टी से मूर्ति बनाते हैं।
हाँ,
जैसे ज्वालामुखी का फटना, भूकंप आना, प्लेट्स का खिसकना, ये सब जमीन को अंदर से बाहर की तरफ धकेलते हैं।
अच्छा, तो ये जमीन को आकार देते हैं।
बिल्कुल, ये नई चट्टाने बनाते हैं, जमीन को ऊंचा करते हैं। लेकिन प्रकृति सिर्फ निर्माण नहीं करती।
तो बाहरी शक्तियां क्या हैं? मतलब अगर मूर्तिकार मूर्ति बना रहा है तो उसे तोड़ने या नया आकार देने वाला कौन है?
बाहरी शक्तियां जलवायु से आती हैं, हवा, बारिश की बूंदें, बहती हुई नदियां और विशाल ग्लेशियर।
तो ये सब तोड़ने का काम करते हैं।
हाँ, ये सब एक सैंड पेपर या रेगमाल की तरह काम करते हैं।
अरे वाह, सैंड पेपर।
जैसे ही आंतरिक शक्ति किसी पहाड़ को ऊपर उठाती है, वैसे ही जलवायु का सैंड पेपर उसे घिसना शुरू कर देता है।
मतलब हवा उस पहाड़ से टकराती है।
बिल्कुल।
पानी चट्टानों के बीच में जाके जमता है और उन्हें तोड़ता है। फिर नदियां उन टूटे हुए पत्थरों को बहाकर घाटियों में ले जाती हैं।
ये सैंड पेपर वाला रूपक बहुत गहराई से समझाता है कि भू आकृति विज्ञान और जलवायु विज्ञान आपस में कितने गहरे जुड़े हुए हैं।
हाँ, दोनों एक साथ काम करते हैं।
मतलब मूर्तिकार ने पहाड़ बना दिया, लेकिन सैंड पेपर उसे लाखों सालों तक घिसता रहता है।
सही कहा।
इसीलिए पहाड़ अंतरिक्ष तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि मौसम उन्हें लगातार काट रहा है। ये बहुत लॉजिकल है।
इसमें एक और परत है। केवल जलवायु ही जमीन को नहीं घिसती, जमीन का आकार भी जलवायु को बदल सकता है। ये एक टू वे स्ट्रीट है।
जरा रुकिए, ये बात थोड़ी उलझी हुई लग रही है।
कैसे?
मौसम जमीन को काटता है ये तो समझ में आता है, सैंड पेपर वाली बात, लेकिन जमीन मौसम को कैसे बदल सकती है? फिर से हिमालय का ही उदाहरण लेते हैं, इसे समझना आसान होगा।
ठीक है।
जब टेक्टोनिक प्लेट्स ने हिमालय को इतना ऊंचा कर दिया, तो उस विशाल दीवार ने जलवायु के पूरे पैटर्न को ही बदल कर रख दिया।
अच्छा, दीवार बन गई तो हवा रुक गई होगी।
एकदम। जब हिंद महासागर से मानसून की नमी भरी हवाएं आती हैं, तो हिमालय उन्हें उत्तर की तरफ जाने से रोक लेता है।
तो सारी बारिश इसी तरफ हो जाती है।
बिल्कुल, सारी बारिश इस तरफ हो जाती है, जिससे यहाँ घने जंगल और उपजाऊ मैदान बनते हैं, जैसे हमारा उत्तर भारत।
लेकिन हिमालय के उस पार का क्या, तिब्बत की तरफ?
वहाँ हवाएं नमी नहीं ले जा पाती, वहाँ एक सूखा और ठंडा रेगिस्तान बन जाता है।
ओ, तो मूर्तिकार ने जो दीवार बनाई, उसने सैंड पेपर के काम करने का तरीका ही बदल दिया।
बिल्कुल सही, यही मैं कहना चाह रहा था।
ये सच में एक आहा मोमेंट है मेरे लिए। मतलब पृथ्वी की बनावट और उसका मौसम एक दूसरे को लगातार दिशा दे रहे हैं।
हाँ, दोनों एक दूसरे को चलाते हैं।
लेकिन अगर हम इस पूरी तस्वीर को देखें, तो जमीन बन गई, मौसम तय हो गया, पहाड़ बन गए और घाटियां कट गईं।
बिल्कुल।
पर ये सब तो निर्जीव चीजें हैं ना, सिर्फ चट्टाने और हवा। जीवन को पनपने के लिए तो कुछ और भी चाहिए।
हाँ, सिर्फ पत्थर पर तो जीवन नहीं पनप सकता।
जो हमें भौतिक भूगोल की अगली महत्वपूर्ण शाखाओं की ओर ले जाता है। मैं सोच रही थी कि नंगे पत्थर से घने जंगल तक का सफर कैसे तय होता है।
इस सफर का सबसे बड़ा उत्प्रेरक या कैटलिस्ट है पानी।
पानी, जलमंडल।
हाँ, और यही स्रोत विज्ञान यानी ओशनोग्राफी और जल विज्ञान यानी हाइड्रोलॉजी पर बहुत जोर देता है।
तो पानी ही वो माध्यम है जो ऊर्जा को ले जाता है।
बिल्कुल, पानी ऊर्जा और खनिजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। समुद्र विज्ञान महासागरों की गहराई, समुद्री धाराओं और पानी के खारेपन का अध्ययन करता है।
तो महासागर का इसमें क्या रोल है?
महासागर असल में पृथ्वी के थर्मोस्टेट की तरह है। वे सूरज की गर्मी को सोखते हैं और धाराओं के जरिए उसे पूरी दुनिया में बांटते हैं।
भाप बनकर उड़ता है और बारिश के रूप में जमीन पर आता है।
बिल्कुल, जल चक्र, नदियां और जमीन के अंदर का पानी।
लेकिन मेरा एक सवाल है, सिर्फ पानी के चट्टान पर गिरने से जीवन तो नहीं बन जाएगा? बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी छूट रही है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं।
अब मिट्टी की बात कर रही है ना?
हाँ बिल्कुल, मिट्टी। स्रोत में मृदा भूगोल यानी पेडोलॉजी को एक अलग शाखा के रूप में क्यों रखा गया है? क्या मिट्टी सिर्फ धूल नहीं है?
ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मिट्टी सिर्फ धूल है। मृदा भूगोल हमें बताता है कि मिट्टी असल में एक जादुई परत है।
जादुई परत? वो कैसे?
क्योंकि यही वो जगह है जहाँ भौतिक दुनिया और जैविक दुनिया आपस में मिलती है।
अच्छा।
जब नदियां और हवाएं चट्टानों को घिस घिस कर बारीक कणों में बदल देती हैं, तो वो सिर्फ रेत होती हैं, उसमें जीवन नहीं होता।
तो फिर मिट्टी कैसे बनती है?
मिट्टी तब बनती है जब उन बारीक कणों में पानी मिलता है, हवा मिलती है और सूक्ष्म जीव या सड़े गले पत्ते मिलते हैं।
तो ये कोई रातों रात होने वाला काम नहीं है।
बिल्कुल नहीं। प्रकृति को सिर्फ एक इंच उपजाऊ टॉप सॉइल बनाने में सैकड़ों या हजारों साल लग सकते हैं।
बाप रे, हजारों साल?
हाँ, और यही मिट्टी हमारी पूरी कृषि, हमारे भोजन और जमीन पर मौजूद हर तरह के जीवन का आधार है।
मतलब अगर मिट्टी नहीं होगी तो कोई भी पौधा जड़ नहीं पकड़ पाएगा।
एकदम सही।
तो अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को एक सीधी रेखा में रखें,
सबसे पहले भूआकृति विज्ञान ने जमीन और चट्टाने दी,
हाँ?
फिर जलवायु विज्ञान ने मौसम और तापमान तय किया,
जल विज्ञान ने पानी दिया जिसने चट्टानों को तोड़ा,
बिल्कुल सही ट्रैक पर है,
और फिर उस टूटी हुई चट्टान और पानी से मृदा भूगोल के तहत मिट्टी बनी। अब इस मिट्टी, पानी और मौसम के तैयार मंच पर जीवन की एंट्री होती है।
हाँ बिल्कुल, किसी नाटक के मंच की तरह, जो हमें स्रोत की अंतिम शाखा की ओर ले जाता है, जैव भूगोल यानी बायोजियोग्राफी।
जैव भूगोल असल में भौतिक भूगोल और जीव विज्ञान के बीच का पुल है।
अच्छा, तो ये दोनों को जोड़ता है।
हाँ, ये इस बात का अध्ययन है कि पृथ्वी पर कौन सा पौधा या जानवर कहाँ पाया जाता है और वो वहीं क्यों पाया जाता है।
तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जैव भूगोल वास्तव में उन सभी पिछले विज्ञानों के समीकरण का अंतिम परिणाम है?
बिल्कुल कह सकते हैं।
मेरा मतलब है, किसी भी जगह का जीवन पूरी तरह से वहां के भूगोल पर निर्भर है।
इसे एक उदाहरण से समझते हैं। ध्रुवीय भालू, पोलर बेयर, आर्कटिक में ही क्यों मिलता है, अंटार्कटिका में क्यों नहीं?
हाँ, ये सोचने वाली बात है, जबकि दोनों जगह भयंकर ठंड है।
बिल्कुल,
ये एक अच्छा सवाल है। पेंगुइन दक्षिणी ध्रुव पर है और ध्रुवीय भालू उत्तरी ध्रुव पर, ऐसा क्यों?
क्योंकि जैव भूगोल केवल जलवायु पर निर्भर नहीं करता, बल्कि जमीन के इतिहास और भूगोल पर भी निर्भर करता है।
जमीन का इतिहास थोड़ा समझाइए।
उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक एक जमा हुआ महासागर है जो जमीन से घिरा हुआ है।
अच्छा।
जिससे भालू जैसे जमीनी जानवर वहां आसानी से पहुंच सकें और बर्फ पर शिकार करने के लिए खुद को ढाल लिया।
और अंटार्कटिका के साथ क्या हुआ?
जबकि अंटार्कटिका एक विशाल महाद्वीप है जो करोड़ों सालों से बाकी दुनिया से महासागरों द्वारा कटा हुआ है।
ओ, तो वहां कोई जमीनी रास्ता नहीं था।
बिल्कुल, वहां बड़े जमीनी शिकारी जानवर पहुंच ही नहीं पाए, इसलिए पेंगुइन जैसे पक्षियों ने वहां अपना साम्राज्य बसा लिया,
क्योंकि उन्हें जमीन पर किसी का डर नहीं था।
एकदम सही। ये शुद्ध रूप से भूगोल और विकास का यानी एवोल्यूशन का कॉम्बिनेशन है।
ये हैरान कर देने वाला है। इसका मतलब है कि हमारे आसपास मौजूद हर एक पेड़, हर एक जानवर और यहाँ तक कि हमारा अपना अस्तित्व भी इन चार गियर्स के सटीक तालमेल का नतीजा है।
हाँ, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल का तालमेल।
अगर हम किसी एक चीज को बदल दें तो पूरी की पूरी प्रणाली चरमरा सकती है।
और यही बात इस विषय को सिर्फ अकादमिक नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण बनाती है।
बिल्कुल।
स्रोत का निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है। भौतिक भूगोल हमारी धरती की कार्य प्रणाली को समझने का आधार है।
तो आज हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, चाहे वो उपजाऊ मिट्टी का मरुस्थल में बदलना हो या बेतहाशा बाढ़ आना हो, वे सब इसी सिस्टम में आए असंतुलन का परिणाम है।
एकदम सही कहा आपने, ये सब उसी असंतुलन का नतीजा है।
जब हम इस पूरे अंतर संबंध को, इस इंटरकनेक्टेडनेस को समझते हैं तो ये बात डराने वाली भी लगती है और बहुत गहराई से सोचने पर भी मजबूर करती है।
डराने वाली इसलिए क्योंकि हमें ये एहसास होता है कि ये सिस्टम कितना नाजुक है। अब जरा एक आखिरी विचार पर गौर करते हैं।
बिल्कुल, बताइए।
जो इस पूरे स्रोत के सार को समेट लेता है। हमने देखा कि ये चारों मंडल कैसे जुड़े हैं। मान लीजिए समुद्र विज्ञान के तहत हमारे महासागरों का तापमान सिर्फ 1 या 2 डिग्री बढ़ जाता है,
जो कि कोई काल्पनिक बात नहीं है, ऐसा सच में हो रहा है आजकल, ग्लोबल वार्मिंग।
हाँ बिल्कुल हो रहा है। अब इस 1 डिग्री के बदलाव का असर देखिए, महासागरों का तापमान बढ़ा तो जल चक्र में तेजी आएगी।
मतलब ज्यादा पानी भाप बनेगा।
हाँ, वो अतिरिक्त भाप जलवायु के गियर को घुमाएगी जिससे भयंकर चक्रवात और तूफान जन्म लेंगे।
और जब वे तूफान जमीन से टकराएंगे तो क्या होगा?
वे हजारों सालों में बनी उस 1 इंच उपजाऊ मिट्टी को बहा ले जाएंगे।
बाप रे, पेडोलॉजी वाला गियर भी टूट गया।
बिल्कुल, और जब मिट्टी ही नहीं बचेगी तो अंततः जैव मंडल में उस जमीन पर मौजूद जंगलों और जीवों का पूरा आवास हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।
मतलब महासागर के तापमान में हुआ एक छोटा सा बदलाव जमीन के जीवों का घर छीन लेता है।
एकदम सही, यही वो चेन रिएक्शन है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे।
यह सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है।
क्या हम अपनी
रोजमर्रा की भागदौड़ में कभी इस बात का एहसास करते हैं कि प्रकृति का ये चार गियर वाला सिस्टम कितना नाजुक है?
बहुत कम लोग इस पर ध्यान देते हैं।
और आपस में कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। एक मामूली सी छेड़छाड़ पूरे जीवन चक्र को हिला सकती है।
हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस दुनिया को देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदलने पर मजबूर कर देता है।
बिल्कुल सही कहा। हम उम्मीद करते हैं कि इस गहन चर्चा ने हमारे आसपास के भूगोल को एक नई जासूस वाली नजर से देखने की प्रेरणा दी होगी।
मुझे भी यही उम्मीद है।
अगली बार जब हम किसी पहाड़ को देखें या अचानक तेज होती हवाओं को महसूस करें तो हमें याद रखना चाहिए कि ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं हैं।
हाँ, ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं।
हम एक बेहद विशाल, जटिल और आपस में जुड़ी हुई मशीन का हिस्सा है और अब उस मशीन का मैनुअल हमारे पास है।
बिल्कुल।
इस चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकृति के इन रहस्यों पर विचार करते रहें और अपने आसपास की दुनिया को डिकोड करते रहें।